नमस्कार आदाब दोस्तों, मोबाइल वाणी की पाठशाला गुरु मंत्र में सभी छात्रों का स्वागत है। दसवीं के परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए मोबाइल वाणी लेकर आया है खास कार्यक्रम, जहां आपके पसंदीदा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है अलग अलग विषयों पर कुछ खास जानकारियां। तो आज का विषय है अर्थशास्त्र। जो छात्र छात्राएं हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे काम छोड़कर सुने अपने पसंदीदा शिक्षक को और मन में जो भी सवाल आए वो रिकॉर्ड भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास।
बच्चों, मैं प्लस टू हाई स्कूल नगरनासा का पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक पंकज कुमार सिंह आप सब मुखातिब हूँ। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय एक में भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग अध्याय दो, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और भारत का संविधान क्या स्टैटिक है या फ्लेक्सिबल है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर क्या असर हुए और क्या बचे हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और क्या हमारा संविधान एक जीवित डॉक्यूमेंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं ने जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया, वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसकी और देशों में उस रूप में उसकी कल्पना कहीं और नहीं हुई थी। एक राष्ट्र दो राष्ट्रों में विभक्त हो चुका था और कोई और राष्ट्र फिर से न उभरे कभी, इस बात की कसक उनके मन में और संविधान सभा को हमेशा रही। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की रचना की गई। इसलिए भारत की संविधान की जब रचना हुई तो राष्ट्रीय एकता पर बहुत ही अत्यधिक जोर दिया गया और इस कारण संविधान में संशोधन की कई प्रक्रियाएं रखी गई। तीन प्रक्रियाएं मुख्य रूप से है। संविधान के कुछ भाग साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं और संविधान के कुछ भाग दो तिहाई बहुमत से संशोधित होते हैं और कुछ विशिष्ट संशोधन भारत के प्रांतों के आधी विधानसभाओं की संस्तुति के बाद संशोधित होते हैं। तो इन तीन प्रक्रियाओं से गुजरकर भारतीय संविधान में अभी तक लगभग 125 संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। अमेरिका की वनस्पति ये बहुत बड़ा है, वहाँ के संविधान में 10 अनुच्छेद है, जबकि हमारे मूल संविधान में ही 395 अनुच्छेद थे और बाद के संशोधनों के द्वारा भी कई अनुच्छेद और जोड़ दिए गए। कुल मिलाकर अभी 400 से ऊपर अनुच्छेदों की चर्चा की जाती है। तो ये कहना होगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान की रचना की, उससे भारत विगत 6-7 दशकों तक तो जो बचा हुआ था वो अक्षुण रहा, केवल अक्षुण ही नहीं रहा, विकसित भी होता रहा। और आज एक भारत पहली पंक्ति के राष्ट्रों से थोड़े ही नीचे पायदान पर अपने को रखे हुए हैं। इस मामले में हमारा संविधान सफल है कि हमने उस संविधान को कभी उतारने की कोशिश नहीं की, पलटने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसमें परिवर्तन होता है। जिस संविधान में संशोधन न हो, वो संविधान एक दिन मर जाता है। और यही इसकी महत्ता है कि भारतीय संविधान में संशोधन के बावजूद वो संविधान चिरस्मरणीय है, जीवित है और फ्लेक्सिबल है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन के बाद से ये आवाज़ उठनी शुरू हुई कि भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि बाद के वर्षों में इतने मुकदमे होने लगे कि उसको हल करने के लिए संविधान में कई संशोधन किए गए और ये बात रख दी गई कि कुछ मामलों को सर्वोच्च न्यायालय नहीं देखेगा। 1967 के गोलकनाथ विवाद से ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कर दिया कि भारतीय संविधान के कुछ मूल व्यवस्थाएं हैं, आधारभूत तत्व हैं, जिन्हें कोई पलट नहीं सकता। इन व्यवस्थाओं में सेकुलर राष्ट्र, समाजवादी विचारधारा, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता और अपने अपने दायरे में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य में बंटवारा,
ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर संसद ने इस पर हमला किया और बाद में उसने कहा कि हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और कुछ और चीज़ों को उसने कहा कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रतिकर देने के मामले में कहा गया कि राज्य किसी की संपत्ति को ले सकता है और ये निर्धारित कर सकता है कि प्रतिकर क्या दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी की संपत्ति जब ली जाएगी तो उसको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन संसद ने कहा जो मुआवजा क्या होगा ये हम देखेंगे और ये एक रुपया भी हो सकता है। ये विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुआवजा या प्रतिकर कम से कम ऐसा हो जो न्यायिक दिखे, ऐसा होना चाहिए कि उससे उसमें ये दिखे कि न्याय हो भी रहा है, केवल कहने के लिए मुआवजा नहीं हो। तो इस तरह से भारतीय संविधान की मूल अवधारणाएँ, बेसिक स्ट्रक्चर और भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक खींचतान बहुत दिनों तक चलता रहा। बाद के वर्षों में इसे हल तो नहीं किया जा सका, लेकिन जब सरकारें मजबूत हुई, संसद मजबूत हुआ, तो उसकी प्राथमिकताएं ऊपर रही और जब सर्वोच्च न्यायालय उस समय थोड़ा शिथिल हुआ तो ऐसा ही हुआ। आज के दौर में अभी कहा जा सकता है कि संसद का हाथ ऊपर है और वही संविधान, भारतीय संविधान को तय कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय उसके सामने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह अभी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं बन पाया है, यह हम कह सकते हैं।
तो दोस्तों, रोजाना गुरु मंत्र कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।